हरे कृष्णा। तो कनकदास नाम के बहुत महान भक्त थे, लेकिन जाति से शूद्र थे वो। और ब्राह्मण लोग कैसे मालूम है ना आपको, ब्राह्मण लोग हमेशा जाति का बहुत गर्व दिखाते हैं और शूद्रों को बहुत खराब व्यवहार करते हैं उनसे। यहाँ से पानी नहीं पीना, यहाँ नहीं छूना, इधर नहीं करना, उधर अंदर नहीं आना, तो वो उसको अंदर आने नहीं दिया उन्होंने। तो वो खिड़की के पास, खिड़की जहाँ थी उधर बाहर मंदिर में खड़े थे दूर, लेकिन खिड़की उनको नजर आ रही थी। तो खिड़की के पास भगवान ऐसे एंगल में खड़े हैं, ऐसे मैं यहाँ देख रहा हूँ लेकिन वो वहाँ पर खड़े हैं, और वहाँ से वो पुकार रहे हैं। बहुत उन्होंने रो रो के भगवान को पुकारा, बहुत गीत गाए हैं। तो फिर उन्होंने भोग लगाया और मंदिर जब बंद किया, तो जब दोबारा खोला ना तो भगवान पूरा टर्न हो गए थे। और मार भी मारा, पीटा, उनको भगाने की कोशिश भी किया उन्होंने, इसलिए वो बाहर जाके रोने लगे मंदिर के बाहर से। तो भगवान ने फिर उनको ना घूम घूम के दर्शन दिया। जो दर्शन देने के लिए वो पुजारी लोग उनको मना कर रहे थे, उसको ही भगवान ने घूम के दर्शन दिया। इसलिए उसको कहते हैं कनक ये ना किंडी, मतलब कनक दास की खिंडी यानी विंडो। अभी रुहा प्रश्न ये है कि वो अभी तक उधर ही क्यों खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि वो अपने भक्त के प्रामाणिक प्रार्थना को ऐसे उत्तर देते हैं, उसको लोगों को याद रहना चाहिए, इसलिए वहीं खड़े हो। पंडरपुर के भगवान कमर पे हाथ रखा क्यों खड़े हैं, अभी उनको हाथ नीचे रखने में क्या प्रॉब्लम है, हो गया ना अभी पुंडलिक का लीला, पुंडलिक का लीला हो गया ना अभी, तो नीचे रखो अभी हाथ, हो गया काम। तब तक तो हाथ कमर पे रख के खड़ा रहने को बोला था, इसलिए खड़े हो गए। अभी वो पुंडलिक घूम के मिले उनसे तो हाथ नीचे रखना चाहिए। लेकिन पुंडलिक ने क्या बोला भगवान को, पुंडलिक ने बोला कि आप ना जैसे खड़े हो वैसे ही खड़े रहो, ताकि आप अपने भक्त पर कितना प्रेम करते हो और कैसे इंतजार करते हो भक्त के लिए, वो केवल मुझे ही क्यों दिखना चाहिए, मेरे सामने आप खड़े हो और मुझे ही पता चल रहा है कि आप ऐसे खड़े हो मेरे लिए इतने प्रेम से। तो आपका ये प्रेम जो भक्त पर है, प्रामाणिक भक्त पर जो प्रेम है, वो आने वाले अनंत पीढ़ियों तक लोगों को दिखना चाहिए, इसलिए आप इसी रूप में प्रकट हो जाओ। अभी आप बोलेंगे कि अरे वो जगन्नाथ भगवान ने तो उधर जो लीला सुनी थी रोहिणी के मुख से, इसलिए भाव विभोर होकर उन्होंने हाथ पैर अंदर चले गए, आँख बड़ी बड़ी हो गई, बड़ी बड़ी मुस्कान हो गई, तो अभी उसी रूप में खड़ा होने की जरूरत क्या है, कथा तो समाप्त होगी ना, उधर रोहिणी की कथा समाप्त हो गई, तो अभी वापस नारद मुनि ने उनको हाथ लगाया तो वापस नॉर्मल हो गया ना वो। लेकिन नारद मुनि ने क्या बोला कि ये जो आपका अद्भुत महाभाव का विरह भाव का रूप है ना, ये मैंने देखा तो मेरे इतने प्रेम उमड़ाया, मेरे शरीर में, मेरे मन में इतना प्रेम उमड़ाया, तो ऐसा क्यों होना चाहिए कि अरे मुझे ही दिखेगा वो और किसी को दिखने वाला नहीं है। नहीं, मैं आपको विनती करता हूँ, वरदान मांगता हूँ कि आप उसी रूप में कलयुग में मतलब पृथ्वी पर प्रकट हो जाओ, ताकि मैं अकेला क्यों, पूरी जनता आपको देखें, जो बद्ध जीव हैं, दुख दुख भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, वो सबको आप दर्शन दो उसमें, तो उन आपको देखने मात्र से पापी जीव के अंदर भी प्रेम उत्पन्न होगा और आपके पास लौट के आएगा वो। तो ऐसा प्रश्न पूछना भी मूर्खता की बात है, ऐसे क्यों खड़े हैं। तुम्हारा बच्चा तुमको बोलेगा ना, कल जो पोज बनाया था आज भी बनाओ, तुम आज भी बनाओगे, ऐसे खड़े रहो एक पैर पे, अच्छा लग रहे थे आप, दोबारा बनो ऐसे ही। और नेक्स्ट घर पे आओगे बोलेगा पापा वैसे ही खड़े रहो, तुम वैसे खड़े रहोगे, तो रोज रोज खड़े रहोगे, क्यों खड़े रहोगे आप, क्योंकि आपका बच्चे पर प्रेम है, बच्चे का आप पे प्रेम है, उसके लिए आप जोकर भी बन सकते हो प्रेम की वजह से। उसी कारण से वो भगवान भी कनकदास के ऊपर जो कृपा किया उन्होंने, ये बताने के लिए कि मैं किसी का भेदभाव नहीं करता, मेरे लिए भक्ति प्रधान है, प्रेम प्रधान है, मैं जाति भेद धर्म भेद नहीं करता, मैं मेरे भक्त पर प्रेम करता हूँ चाहे किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, ये बात को लोगों को हमेशा याद होती रहे, इसलिए भगवान अभी तक खिड़की में ही खड़े हैं, ताकि आपको ये यकीन हो कि वो तुम्हारे जाति धर्म को देखकर, पढ़ाई को देखकर दर्शन नहीं दे रहे, वो भक्ति को दर्शन दे रहे हैं, जो भक्ति दिखाते हैं उसको दर्शन दे रहे हैं। वो कमर पे हाथ पे खड़े क्यों है, क्योंकि उसने भक्त ने बताया था उसके लिए खड़े थे, तो वो दर्शन सबको होना चाहिए, इसलिए उसने किया। और जगन्नाथ भी उसी लिए उधर प्रकट हो गए, नहीं तो जगन्नाथ जी को प्लान नहीं था वहां पर आने का, उनका लीला हो गया वहां पर समाप्त। लेकिन नारद मुनि की करुणा से वो लीला आगे प्रकट हुई, और वो उस समय जो गिरे द्वारका में गिरे थे, वो आज भी आपको दर्शन दे रहे उसी रूप में, वृंदावन के विरह में, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अभी अगले बुधवार को जाके उत्तर बता देना उनको, तीनों उदाहरण के साथ बोलना। और बोलूं उदाहरण? देखो कैसा है ना, भगवान के प्रेम को कोई तर्क के आधार पर समझ नहीं सकता है, ये तर्कवाद है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वो तीन जगह झुके क्यों खड़े हैं, सीधा खड़ा होना नहीं आता क्या उनको? बच्चे कैसे बोलते हैं, ये सीधा खड़ा रहे, टेढ़ा क्यों खड़ा रहता है, एक पैर पे खड़ा क्यों रहता है, सीधा खड़ा रहना, ऐसा बच्चे को बोलते हैं। वैसे भगवान को समझते हैं, नहीं वो क्या है, टेढ़ा खड़ा है क्यों, इतना सीधा खड़ा जमता नहीं क्या उसको, ऐसा बोलते। लेकिन उसके तीन जगह पर झुकने के बाद में जो भगवान के भक्तों के अंदर जो प्रेम पैदा होता है, वो इन लोगों को क्या मालूम कि भक्त उनको तीन त्रिभंग रूप में देखकर कितना प्रेम करते हैं, उनके ऊपर कितना मोहित हो जाते हैं। गोपियां बोलती हैं कि हमारा दिल बहुत स्ट्रेट था पहले, फिर ये दिल में आ गया और ये है टेढ़ा, तो इसको फिट करने के लिए दिल भी टेढ़ा हो गया, दिल भी एडजस्ट हो गया और ये फिट हो गया। अभी ये छोड़ के चला गया तो हमको उसको निकाल के बाहर फेंकना है दिल से, लेकिन क्या करे, हृदय भी टेढ़ा हो गया, ये भी टेढ़ा है, इतना फंस गया, अंदर निकलता ही नहीं बाहर। ऐसे गोपियां बोलती कि हमारा हृदय भी टेढ़ा हो गया उसकी वजह से, हमने उसको समाने के लिए हृदय को भी उसी तरह से मोड़ लिया और आज हमको उनको भूल जाना है, उनको हृदय से निकाल देना है, लेकिन वो निकलते ही नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना हृदय को टेढ़ा कर दिया ना अंदर से, तो कैसे निकालें उसको। तो जो चीज़ आक्षेप जैसी होती है, मतलब ऑब्जेक्शनेबल, आक्षेपार्ह मतलब ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है, कि ऐसे क्यों पहना तुमने काला ड्रेस, सीधा नहीं पहन सकते क्या? और वही चीज़ अगर उनका पति आ गया तो उसको लगेगा कितनी सुंदर लग रही है, वही चीज़ है जो आक्षेपार्ह है, लेकिन प्रेम के बिना आक्षेप वाली चीज़ है, वो ऑब्जेक्शन वाली चीज़ है, लेकिन जैसे प्रेम होता है ना वही चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो प्रेम सबसे बड़ी बात है। उद्धव जी जब आए ना वृंदावन में, तो वो सोच रहे थे कि मैं गोपियों को ना योग सिखाऊंगा, योग, क्योंकि योग करने से क्या होता है ना, मन को हम कंट्रोल में कर सकते। तो ये दुखी है ना बहुत गोपियां, उनको दुख से मुक्त करा दूंगा, उनको प्राणायाम सिखाऊंगा, योग सिखाऊंगा, क्या कहते हैं उसको, निरीक्ष बना दूंगा, ऐसा विरक्त बना दूंगा, दुख से मुक्त करा दूंगा उनको, क्योंकि योग तो बड़े पंडित थे ना वो। तो आए पहले वृंदावन में तो जमुना किनारे सब लोग बैठे हैं ध्यान लगाकर पद्मासन में, तो बोला अच्छा है, थोड़ा अभ्यास पहले से ही है, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, पहले से ABCD सीख चुका है। तो गए उनको मिलने के लिए, आप योग कर रहे हो? हाँ। बोल कैसा योग कर रहे हो? वो बोल रहे हैं कि जो दिल में कृष्ण बस गया है ना, उसको बाहर निकालने के लिए योग कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं अरे मैंने वो योग सीखा है जो कभी किसी के पकड़ में नहीं आता है, उसको हृदय पकड़ के हृदय में कैसे बिठाना है, वो योग मैंने सीखा है, लेकिन हृदय में बसे हुए कृष्ण को निकालने का योग मैंने सीखा नहीं है। उधर ही वो क्लीन बोल्ड हो गया, पहले ही स्टेप पे क्लीन बोल्ड हो गया कि ये लोग इतने महान लोग हैं कि ये मैं उनको योग सिखाकर वो श्वास को नियंत्रण में लाकर वो कैसे मन को एकाग्र करते हुए कैसे परमात्मा को हृदय में देखना है, ये परमात्मा पर ध्यान करने के बाद मन कैसे दुखी दुख से मुक्त हो जाएगा, ये सब मैं सिखाने वाला था उनको, लेकिन वो परमात्मा उनके हृदय में ऐसे घुस गया है, वो निकल ही नहीं रहा है, वो उसको निकालने के लिए योग कर रहे हैं, ये योग तो हमको सिखाया नहीं किसी ने, बृहस्पति गुरु जी ने। तो उधर ही बिविल्डर हो गए वो पहले आते ही। तो जो चीज़ भगवान के अभक्त को कहते हैं क्या है ये सभी, ऐसा क्यों, एक जगह हाथ में हाथ कमर पर खड़े हैं, एक जगह ऐसे हाथ पैर है ही नहीं उनको, एक जगह टेढ़े खड़े हैं, एक जगह गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, एक जगह पेट फाड़ कर हाथों का माला पहना रहे, क्या है ये सब, भगवान क्या मजाक है क्या सभी, क्योंकि भगवान है ये, एक खून में लथपथ है, इतना क्रूर कर्म कर रहे हैं, पेट फाड़ कर आते निकाल कर गले में लटका रहे हैं, पूरा खून से लथपथ हो गए, ऊपर से अंदर से हाथ डालकर उसने फल तोड़ते ना वैसे तोड़ दिया, हार्ट उसका तोड़ ही दिया उसको ऐसे और फेंक दिया जमीन पर, क्योंकि भगवान है क्या, ऐसा बोल सकते हैं? लेकिन जिनका उन पर प्रेम है, जिनको भक्ति है, ज्ञान है, उनको देखकर इतना आनंद आता है, अरे क्या हमारे भगवान है, वाह ऐसे प्रकट हो गए, देखो एक क्षण में प्रकट हो गए ऐसे अद्भुत तरीके से। हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ा था कि ये 84 लक्ष योनि में से कोई योनि नहीं है, ये अलग ही योनि है, उसको ज्ञान था ना पूरा। तो जब उसने देखा ना हाफ मैन हाफ लायन, तो तुरंत समझ गया वो कि ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया कोई योनि नहीं है ये। तो एक क्षण के लिए डर गया था वो, लेकिन उसके अहंकार की वजह से फिर उसको क्रोध आया, लेकिन एक क्षण के लिए डर गया था उसको देख के कि ये बाप रे कौन आया ये। लेकिन अहंकार होता ना, अरे मैं भी कुछ कम होगा देख लूंगा उसको, ऐसे करके वापस आक्रमण किया उसने, लेकिन डर गया था वो देख के उनको। उनके सामने वो कीटक के समान था। तो टीका करने वाला कोई कितना है, क्या ये सच है क्या, ऐसा कोई भगवान आता है क्या, कौन भगवान होते हैं क्या, ऐसे खंभे से आ सकते हैं, कौन खंभे से आज तक आया है क्या, क्या बात करते हो, आधा आदमी आधा लायन, कोई ऐसा कोई देखा है क्या कभी, कोई सर्जरी किया है क्या आज तक, ऐसे हाफ मैन हाफ लायन, बोले क्या गणपति है, कोई सर निकाल दिया तो वो हाथी का सर लगा दिया, ऐसा कभी हुआ है क्या आज तक, इनके धर्म में क्या क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है, ऐसा लगेगा आपको ना, एलिफेंट गॉड ऐसे बात करते हैं। तो अश्रद्धालुओं के लिए तो है ही नहीं विषय है ये, कैसे समझाए उनको, ऐसा है। हरे कृष्णा।